दोपहर का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, पर हवेली के अंदर हमेशा की तरह हल्की सी ठंडक थी। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और पुराने लालटेन की मध्यम रोशनी। रसोई घर बड़ा था, दीवारों पर तांबे पीतल के बर्तन चमक रहे थे और कोयले वाले चूल्हे से धीमी धीमी धुआं से खुशबू फैल रही थी। श्यामली दोनों हाथों में आटा गूंध रही थी, पर उसका मन, उसकी उंगलियां, उसकी सांसें सब कहीं और थीं। वो एक ही चीज सोच रही थी, वो बंद कमरा, ताला, विश्वनाथ की चाल, उसकी आंखें और वो एक वाक्य, वहां वो चीज है जो मेरे काबू में नहीं। उसकी उंगलियां आटे में डूबी थीं, पर उसका दिमाग ताले में अटका हुआ था। बहू जी, अगर आटा इतना गूंधेंगी ना तो खिचड़ी बन जाएगी रोटी की, मधु की आवाज ने उसके ख्याल को तोड़ा। श्यामली ने चौंक कर हाथ पीछे किए। हाँ, ध्यान नहीं रहा, मधु हंसी, मगर वो हंसी आधी थी, डरी हुई, थोड़ी थकी हुई, जैसे उसे दुनिया की हर बात मालूम हो पर कह नहीं सकती। मधु उम्र में ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त बातों में किसी बड़े जैसे बात करने लगी। चेहरे पर थोड़ी घबराहट, पर आंखें, उनमें कुछ छिपा हुआ था, वही छिपा हुआ जिसकी खुशबू उस बंद कमरे में भी थी। श्यामली ने आटा कटोरे में रखा और मधु को चुपचाप बर्तन जमाते देखते हुए बोली, मधु। मधु ने हाथ रोक दिए। हम्म, एक बात पूछूं? मधु ने शक से देखा। कैसी बात? श्यामली ने हिचकिचाकर कहा। हवेली में एक कमरा है ना, ऊपर वाले कॉरिडोर में, बंद, ताले वाला। मधु के हाथ में पकड़ा तांबे का कटोरा एक सेकंड के लिए कांपा। वो, उसने गला साफ किया, वो कमरा, बहू जी, वो तो पुराना स्टोर है बस। स्टोर? श्यामली ने आंखें से कोड़कर पूछा, तो फिर साफ क्यों नहीं किया गया कभी? मधु की धड़कने जैसे आवाज बन गई, उसने नजरें चूल्हे पर टिका दी। स्टोर है बहू जी, बंद रहता है, कई स्टोर बंद होते हैं। पर उसमें से अजीब सी महक क्यों आती है? मधु की सांस अटक गई, उसने जल्दी से पतीला उठाकर चूल्हे पर रखा बिना जरूरत के। बहू जी, हवेली पुरानी है, पुरानी हवेली में बहुत महकें आती हैं, हर चीज का मतलब थोड़ी होता है। पर उसके हाथ कांप रहे थे, श्यामली की जिज्ञासा और बढ़ गई। मधु, तुम यहाँ क्या 20 साल से हो? मधु ने आंचल से पसीना पूछा। हाँ, हुए तो हैं इतने साल, तो तुम जानती तो होगी कि उस कमरे में क्या है? मधु रुक गई, उसकी पीठ कड़क सी हो गई, उंगलियां सिहर गईं और आंखों में एक पल को डर चमका, वो डर जो इंसान सिर्फ तब दिखाता है जब उसमें कुछ देखा हो या झेला हो या छुपाना पड़ रहा हो। मधु ने धीमे से कहा, बहू जी, हम तो नौकर हैं, मालिक के कहे बिना कुछ नहीं बोल सकते। श्यामली ने कदम बढ़ाकर उसके करीब खड़े होकर पूछा, पर मैं तो बहू हूँ, क्या मुझे जानने का हक नहीं? मधु ने उसकी तरफ देखा, आंखें लाल, थकी हुई और जैसे कोई चीत्कार भीतर दबा हुआ हो। हक होता है बहू जी, पर कुछ हक जानना नहीं चाहिए। क्यों? मधु ने अपनी नजरें नीची कर ली, कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि कुछ कमरे बंद इसलिए नहीं होते कि उनमें कुछ रखा है, बल्कि इसलिए कि कुछ बाहर ना आ जाए। श्यामली की रीढ़ में ठंड दौड़ गई, आटे की खुशबू, चूल्हे का धुआं, बरसों की पुरानी दीवारें, सब उसे अचानक भारी लगने लगे। उसने फुसफुसाकर पूछा, मधु, क्या तुमने उस कमरे से कभी कुछ सुना है? मधु ने आंखें कसकर बंद कर ली। ठीक उसी पल रसोई घर की दहलीज के बाहर साड़ी का पल्लू हल्का सा हिला। श्यामली और मधु ने नहीं देखा, पर कोई सुन रहा था, शकुंतला। वही खरी सब सुन रही थी, पीली सिल्क की साड़ी, नथनी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो बिना आवाज किए रसोई के बाहर खड़ी थी, जैसे इस बात की आदी हो कि हवेली की हर फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचनी चाहिए। उसने अपनी उंगलियां नथ पर टिका ली और आंखें संकरी कर ली। मधु की आवाज अभी भी फुसफुसा रही थी, हम सब उसी कमरे की वजह से ड्यूटी पर रहते हैं बहू जी, पर उसके बारे में पूछना, ये गलती मत करना, मालिक को पसंद नहीं आएगा। श्यामली ने होंठ पीछे, पर मैं डर नहीं रही, मैं बस जानना चाहती हूँ सच क्या है। सच? मधु ने धीमे से हंसा, एक टूटी सी हंसी, सच बहुत भारी होता है बहू जी, और सच हवेली में हमेशा रात के बाद ही सामने आता है। पर बहू जी बस, मधु ने कांपती आवाज में कहा, आप इतना ही समझ लीजिए, उस कमरे के लिए विश्वनाथ मालिक ने बहुत बहुत कड़े नियम बनाए हैं और वो किसी से नहीं डरते, पर उस कमरे से उसने पल भर के लिए सांस रोकी, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डरते भी हैं। श्यामली का दिल जोर से धड़का, उसने पहली बार किसी को विश्वनाथ और डर एक ही वाक्य में कहते सुना था। रसोई घर में पल भर को सन्नाटा छा गया, बस चूल्हे की आंच धीरे धीरे कड़क रही थी। श्यामली ने मधु की ओर देखा, मुझे डर नहीं लगता, अगर कोई सच है मैं जानूंगी। मधु की आंखें फैल गई, बहू जी आप पर। तभी रसोई के बाहर से साड़ी के पल्लू की सरसराहट हुई, श्यामली और मधु दोनों चौंक कर मुड़ी, पर बाहर कोई नहीं था, बस हल्की धूप लाल पत्थर के फर्श पर गिर रही थी और हवेली में फैली वही पुरानी महक। वे दोनों फिर काम में लग गई, पर उनके दिल धड़क रहे थे। उधर दूसरी ओर शकुंतला लंबा कॉरिडोर पार करके झूले वाले आंगन में पहुंची। रत्ना देवी अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी भी, चांदी जैसे बाल, गहराई भरी आंखें और चेहरे पर सालों का बोझ। शकुंतला उनके पास पहुंची, आंचल ठीक करते हुए, चेहरे की बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए। उसने धीरे से कहा, माँ। रत्ना देवी ने बिना उसकी ओर देखे झूले को हल्का सा झुलाया। शकुंतला पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक डर, एक चिंता और कुछ ऐसा था जो हवेली के किसी कोने में दबा हुआ था। माँ ने पूछा नहीं, पर शकुंतला बोल पड़ी, माँ, श्यामली उस कमरे के बारे में पूछ रही थी। झूले की रफ्तार एक पल को रुक गई। रत्ना देवी की उंगलियां झूले के बांस पर थम गई। कोई हवा नहीं चली, पर आंगन का वातावरण अचानक भारी हो गया। रत्ना देवी ने बहुत धीमे, बहुत गहरी आवाज में कहा, शकुंतला, अब उसे रोकना मुश्किल होगा।